الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم جو مخلوق سراپا خیر وہ فرشتے جو سراپا شر وہ شیطان اور جو خیر اور شر کا مجموعہ وہ حضرت انسان. ہر انسان کے اندر اللہ رب العزت نے خیر اور شر کا مادہ رکھ دیا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. مگر حکم یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر خیر کو غالب کرے. جس بندے پر خیر غالب ہو وہ اچھا انسان, جس پر شر غالب ہو جائے وہ برا انسان. خیر اور شر ہر بندے میں ہوتا ہے. ہاں, جو نیک بندہ ہوتا ہے وہ شر کو ظاہر نہیں ہونے دیتا, اور جو برا بندہ ہوتا ہے وہ خیر کو نہیں ظاہر ہونے دیتا. یہی محنت ہے جو ہمیں اپنی زندگی میں کرنی ہے کہ ہمارا شر دب جائے, خیر غالب آ جائے. آپ کسی نیک انسان کو غصہ دلا دیں, وہ بڑا خوش اخلاق ہوگا, بڑا اچھا ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے والا ہوگا, غصے میں آ کے وہ ایک ڈیفرنٹ انسان ہو جائے گا. وہ جو اتنا پولائٹ گفتگو کرتا تھا, غصے میں ایسے الفاظ بولے گا کہ جو دوسرے بندے کے دل میں اتر جائیں گے, چہرے مہرے سے لگے گا کہ یہ وہ انسان نہیں ہے جو پہلے تھا. تو انسان کے اندر سے خیر نکلے, شریعت یہ چاہتی ہے, اور انسان کے اندر سے شر نکلے, شیطان یہ چاہتا ہے. اب معاملہ ہمارا ہے, ہم اپنے اوپر کتنی محنت کرتے ہیں خیر کو نکالنے کے لیے. جس کو تصوف و سلوک کہتے ہیں, یہ ایک محنت ہے جس کے ذریعے انسان کے اندر کی خوبصورتی باہر نکل آتی ہے. یہ کوئی الگ چیز نہیں ہوتی, پہلے سے اندر ہوتی ہے, اس کو نکالتا ہے انسان. اور جب وہ سج جاتی ہے اس کے اوپر, تو وہی انسان جو بگڑا ہوا تھا وہی معاشرے کا ایک نیک انسان بن جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی تعریف فرمائی, ڈیفینیشن کی, یعنی کسی چیز کی بنیاد سمجھانی ہو تو اس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے مسلمان کی ڈیفینیشن یہ بتلائی, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھوں سے دوسرے مسلمان سلامتی میں ہو, یعنی ان کو تکلیف نہ پہنچے, نہ زبان سے نہ ہاتھوں سے. تکلیف دو طرح سے پہنچتی ہے نا, قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے. तो इसलिए लिसान और यद का तذکرہ हुआ कि ना जुबानी तकलीफ पहुंचाए ना अमली तौर पर तकलीफ पहुंचाए। अब इस हदीस मुबारका में जुबान को मुकद्दम किया गया, हालांकि देखने में आता है कि लोग हाथ से तकलीफ ज्यादा पहुंचाते हैं, लेकिन गौर करें तो बात हकीकत यही है कि जुबान को मुकद्दम होना चाहिए था। वजह क्या कि हाथ की तकलीफ तो इंसान तब पहुंचाएगा ना जब कवि होगा। अगर अगला कवि है तो कैसे तकलीफ पहुंचाएगा, लेकिन जुबान से तो इंसान कमजोर होके भी कवि का दिल जला सकता है, इसलिए जुबान को मुकद्दम किया गया। फिर एक बात और है कि हाथ से तकलीफ पहुंचाने के लिए तो दूसरे का सामने होना जरूरी है। अगर कोई हजारों मील दूर बैठता है तो हाथ से तो तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, मगर जुबान से तो उसको भी तकलीफ पहुंचा सकता है। ऐसी बात करेगा कि वहां बैठ के वो सुनेगा तो उसका दिल दुखेगा। फिर हाथ से तकलीफ इंसान जिंदा को पहुंचा सकता है, जो फौत हो गया उसको तो नहीं पहुंचा सकता, मगर जुबान का मामला अजीब है कि जुबान से जरिए से जो लोग दुनिया से गुजर गए उनकी रूहों को भी तकलीफ पहुंचा सकता है। इसलिए हिकमत देखिए नबी अलैहिस्सलाम के कलाम में, एजाज देखिए कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुस्लिमु, मुसलमान वो है मन सलिम अल मुस्लिमून मिल लिसानिही व यदिही, कि जिसकी जुबान और जिसके हाथों से दूसरे मुसलमान सलामती में हो। चुनाचे मुस्लिम शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तकुफ्फु शर्रका अनिन्नास, तुम लोगों को अपने शर से बचाओ। ये नहीं कहा गया कि तुम्हारे अंदर शर ही ना हो, वो तो रहेगा। इंसान के अंदर खैर और शर तो है, मगर फरमाया कि तुम दूसरों को अपने शर से बचाओ। इसका क्या मतलब कि रोको अपने आप को, अपने आप को तुम कंट्रोल करो, काबू करो, तुम अपने आप को खुला ना छोड़ दो कि जो आया कह दिया, जो आया कर दिया, नहीं, अपने को लगाम दो। दूसरों को अपने शर से बचाओ। चुनांचे जो इंसान दूसरों को अपने शर से बचाए तो ये उसके लिए सदके का सवाब होता है। हदीस मुबारक है, सुनिए मिसाल यूं कि मजलिस में बैठे हैं, आपको मजाक सूझता है किसी के साथ, मगर आप रुक जाते हैं कि यार मैं मजाक करूंगा तो इसकी बेइज्जती होगी, शर्मिंदा होगा, तो मैं नहीं करता। तो आपने अपनी टेम्पटेशन को रोका और दूसरे बंदे को शर से बचा लिया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइन्नहा सदकतुम मिनका अला नफसिक, ये जो तुमने दूसरे बंदे को अपने शर से बचाया इस पर अल्लाह ताला तुम्हें सदका करने का सवाब अता फरमाएंगे। लगा तो कुछ नहीं, मगर दूसरे को हमने शर से बचा लिया, सदके का अजर अता फरमाया। चुनाचे दूसरे को शर से बचाने पर तीन सवाब मिलते हैं। पहली बात कि इंसान कबीरा गुनाह से बच जाता है। दूसरी बात कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के अजाब से बच जाता है। और तीसरी बात कि उसके नामे आमाल में नेकी लिखी जाती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारे अंदर से शर जाहिर ही ना हो, हम इस तरह अपने नफ्स को दबा लें कि उसमें से हमेशा खैर जाहिर हो लोगों के लिए, सब के लिए, शर निकलनी ही बंद हो जाए। तो शरीयत ने एक कानून बना दिया कि गुनाह के तकाजे से जो इंसान बचेगा अल्लाह ताला इस पर भी उसको अजर अता फरमाएंगे। حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس انسان کا دل چاہے کہ میں غیر محرم کو دیکھوں لیکن وہ اپنی نگاہوں کو جھکا لے، بند کر لے، تو غیر محرم سے نگاہوں کی حفاظت کرنے پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو عبادت میں لذت عطا فرما دیتے ہیں. تو دیکھیں، ایک ایسا عمل کیا کہ اللہ کی طرف سے اجر ملا. اسی طرح دل کے اندر جب بھی گناہ کا ارادہ ہو، بندہ اس کو روکے، تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ شریعت نے کہا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس بندے کو اجر عطا فرمائیں گے. چنانچہ شریعت نے یہ بات کہی کہ تم دوسروں کا دل خوش کرو، سب سے بہتر بات تو یہ ہے، اور اگر دل خوش نہیں کر سکتے تو کم از کم دل تو نہ دکھاؤ. حق تو یہ بنتا ہے کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کا دل دکھاؤ تو نہیں. شریعت نے کہا کہ تم دوسروں کی تعریف کرو، اور اگر یہ توفیق نہیں تو کم از کم دوسروں کی بد تعریف ہی تو نہ کرو. شریعت نے کہا کہ دوسروں کا دل خوش کرو، اگر نہ کر سکو تو کم از کم دل آزاری تو نہ کرو. یہ جو ہے نا، دل کو دکھ پہنچانا اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے. چنانچہ ایک بات یاد کر لیں کہ بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، بیماریوں میں سے سب سے بری دل کی بیماری، اور دل کی بیماریوں میں سے سب سے بری دل آزاری ہوتی ہے کہ انسان دوسروں کا دل دکھائے. اس لیے شریعت نے کہا کہ دوسروں کی غیبت کرنا کبیرہ گناہ ہے. یہاں تک حدیث پاک میں فرمایا کہ الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. کیوں؟ کہ دوسرے بندے کا دل دکھتا ہے. اس لیے جو بندہ دوسروں کا دل دکھائے، جہنم میں اس کے لیے پنشمنٹ کی جگہ الگ بنی ہوئی ہوگی. عام لوگوں کو جو پنشمنٹ ملتی ہے، اس کو اس سے الگ دی جائے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةِ لُمَزَةِ، ویل ہے، بربادی ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو. یہ دو الگ الگ بیماریاں ہیں. بعض لوگوں کو عیب ڈھونڈنے کا عیب ڈھونڈنے کی بیماری ہوتی ہے، وہ ہر ایک میں عیب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے، اس میں یہ ہے. تو عیب کا ڈھونڈنا اور تلاش کرنا یہ الگ بیماری. اور بعض لوگوں کی عادت ہے کہ ان کو کسی کا عیب پتہ چل جائے تو وہ سب میں پھیلا دیتے ہیں، یہ الگ بیماری. تو پہلے کو کہیں گے عیب جو، عیب کی تلاش کرنے والا، اور دوسرے کو کہیں گے عیب گو، عیب کو آگے بتانے والا. اور بعض لوگوں میں دونوں بیماریاں ہوتی ہیں، عیب جو بھی ہوتے ہیں، عیب گو بھی ہوتے ہیں. تو شریعت نے دونوں کا تذکرہ کیا کہ ان دونوں کے لیے ویل. علماء نے لکھا کہ جہنم میں ایک الگ سیکشن ہے، اس کا نام ویل ہوگا. وہاں پر ان لوگوں کو بھیجا جائے گا پنشمنٹ کے لیے، جیسا گناہ ویسی پنشمنٹ. اب دنیا میں یہ گناہ کیا کرتے تھے کہ لوگوں کا دل دکھاتے تھے، تو جہنم میں ان کی پنشمنٹ بھی ویسی. فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزۃ، بربادی ہے، ویل ہے اس بندے کے لیے جو عیب جو ہو اور عیب گو ہو. کیوں؟ کہ وہ لوگوں کے دل دکھاتا ہے. اب اس کو جہنم میں ایک ایسی جگہ لے جائیں گے، نار اللہ الموقدہ، ऐसी आग जिसको अल्लाह ने जलाया होगा, तो इस बंदे को वहां जाकर आग के सतून के साथ बांध दिया जाएगा। और फिर वो जो आग के अंगारे होंगे, अल्लती तत्तलियु अलल अफ़ईदा, वो अंगारे वहां से उठेंगे और सीधा इसके दिल पर आकर टारगेट करेंगे। ये लोगों के दिल दुखाता था, आज आग के अंगारे इसके दिल को जलाएंगे। तुम दूसरों के दिल जलाते थे, आज तुम्हारा अपना दिल जल रहा होगा। तो जैसे दुनिया के अंदर ऐसे औजार हैं कि उनके अंदर प्रोग्राम कर दें तो वो टारगेट पे जाके लगते हैं, तो अल्लाह ताला की वो जलाई हुई आग भी ऐसे होगी कि सीधा इस बंदे के दिल पर जाकर लगेगी। तो दुनिया में किसी का दिल दुखाना अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसलिए किसी शायर ने कहा, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे जो कुछ ढहने, पर किसी दा दिल ना ढावी रब दिला में चरेंद है। मस्जिद ढा दो एक गिरा दो या मंदिर गिरा दो, जो गिराते हो गिरा दो, मगर किसी का दिल ना दुखाना, इसलिए कि दिल के अंदर तो अल्लाह रहते हैं। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम तवाफ फरमा रहे थे तो आपकी नजर बैतुल्ला पर पड़ी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बैतुल्ला तेरा मकाम बड़ा है, तेरी इज्जत तेरा शर्फ बड़ा है, लेकिन हुर्मतुल मुमिनी अरजहु मिन हुर्मतिल काबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक मोमिन की हुर्मत बैतुल्ला की हुर्मत से भी ज्यादा है। अब बैतुल्ला जाके तो हम गिलाफ पकड़ के रोते फिरते हैं और मोमिन का जरा सी बात पे गिरेबान पकड़ के खींचते हैं, तो मोमिन का मकाम बैतुल्ला से भी ज्यादा बतलाया गया, इसका एहतराम होना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम कितना ख्याल करते थे कि मेरी तरफ से किसी बंदे को कोई तकलीफ ना पहुंचे। हदीस मुबारक है कि सैयदा शरीका रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं सोई होती थी और नबी अलैहिस्सलाम ने तहज्जुद के लिए उठना होता था तो इतना आहिस्ता से चुपके से उठते थे कि मुझे उठने का पता भी नहीं चलता था। एक दफा मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगे पांव चल रहे हैं, तो मैंने पूछा, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने जूते क्यों नहीं पहने? फरमाया, आयशा तुम सोई हुई थी, मैंने जूते नहीं पहने कि जूतों की आहट से तुम्हारी नींद न खुल जाए। इतना ख्याल अपने घर वालों का, सोचिए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना ख्याल फरमाते थे कि दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। और यही अमल सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की जिंदगियों में नजर आता है। चुनाचे मशहूर वाक्य है कि सैयदना सिद्दीक अकबर का दौरे खिलाफत है, उमर लानो एक दफा मिलने के लिए आए तो उन्होंने एक चमड़े का कागज या जैसा भी था देखा कि उसके ऊपर जो माजूर लोग हैं या एल्डरली हैं, सीनियर सिटीजन जिनको कहते हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं और आगे लिखा हुआ है कि इनका एड्रेस कहां है, और फिर यह भी लिखा हुआ है कि इनकी खिदमत कौन करेगा। एक लिस्ट बनी हुई थी तो उमर लानों ने लिस्ट पढ़ी तो एक जगह एक बुढ़िया का नाम था, एड्रेस तो दिया हुआ था मगर आगे नाम दर्ज नहीं था। तो उमर लानों ने रजिस्टर से नोट कर लिया वो एड्रेस कि भाई इसकी खिदमत तो मैं अपने जिम्मे ले लूंगा। यानी सहाबा लानों के हां ये भी एक आदत, अच्छी आदत थी, हर बंदा फिजिकली किसी ना किसी दूसरे माजूर की या बूढ़े की खिदमत अपने जिम्मे ले लिया करता था। अब आज के दौर में तो अपने मां और बाप की खिदमत नहीं कर पाते, अपने उस्ताद की खिदमत नहीं कर पाते। चुनाचे उमर लानो अगले दिन फजर पड़ने के बाद उस बुढ़ी औरत के घर गए, दरवाजा खटखटाया, उसने पूछा कौन, फरमान लगे उमर क्यों आए हैं, आपको कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं करने के लिए हाजिर हूं। उसने कहा भाई कुछ दिनों से एक बंदा आता है और वो मेरे सारे काम कर जाता है। काम क्या होते थे कि उसके बर्तन धो देना, घर में झाड़ू दे देना, या बाहर कुएं से पानी भर के उसको घर में पहुंचा देना। बाकी काम तो घर की औरतें खुद ही कर लेती थीं। उसने कहा जी कोई बंदा आता है और वो ये सारे काम करके चला जाता है। उमर लानों ने सोचा कि अच्छा कल मैं तहज्जुद पढ़ के आ जाऊंगा। अगले दिन तहज्जुद पढ़ के आए, दरवाजा खटखटाया, बुढ़ी अम्मा ने बताया कि भाई वो तो कोई आया था काम करके चला गया। तो उमर लानों ने पूछा कि अम्मा वो आदमी कौन है, मैं तो नहीं जानती, नाम क्या है, न कभी मैंने पूछा न कभी उसने बताया। अम्मा उसका चेहरा मोरा कैसा है, कद काठ कैसा है। उसने कहा भाई वो आता है तो दरवाजा खटखटा के कहता है पर्दा कर लें, मैं कमरे में चली जाती हूं, जब सारे काम हो जाते हैं तो वो आखिर पे दरवाजा खटखटा के बता देते हैं कि मैं जा रहा हूं, आप आ जाएं, पर्दा खत्म हो गया, मैं निकलती हूं, वो जा चुका होता है। मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा। उमर लानू बड़े हैरान हुए कि ये कौन अल्लाह का बंदा है कि जो इस तरह खिदमत करता है कि ना अपना नाम बताया न कभी अपनी शक्ल दिखाई के कौन है। अगला दिन हुआ तो उमर लानों ने इशा की नमाज पढ़ी और पढ़ने के बाद उस बुढ़िया के घर के करीब एक जगह आकर छुपकर बैठ गए, पूरी रात जागूंगा, आज मैं देखूंगा कि कौन है जो ये काम करता है। काफी देर बैठे गुजर गई, जब रात गहरी हो गई, जब रात का ऐसा वक्त आ गया कि लोग मीठी नींद सो जाते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई, तो फरमाते हैं कि उस वक्त मैंने एक बंदे को देखा जो अंधेरे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बुढ़िया के दरवाजे के करीब हो रहा है। जब करीब आया तो मैं खड़ा हुआ और मैंने पूछा मन अंता आप कौन है भाई, तो जवाब में अबू बकर सिद्दीक लानों की आवाज आई कि मैं अबू बकर हूं। मैंने कहा अमीरुल मोमिनीन आप खिदमत करते हैं इस औरत की और आपने लिस्ट में अपना नाम भी ना लिखा कि किसी को पता ही ना चले, जगह खाली छोड़ी। और फिर मैंने एक बात पूछी कि अमीरुल मोमिनीन आपके पांव में जूती नहीं है, आपके पास जूते हैं नहीं या आप घर छोड़ के आ गए। तो सिद्दीक अकबर ने जवाब दिया ये रात का सोने का वक्त है, मैं अपने जूतों को घर में उतार के पैदल नंगे पांव इसलिए आया कि अबू बकर के जूतों की आहट से किसी की नींद न खुल जाए। ये तरबियत थी जो नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को दी थी कि तुम दूसरे का इतना भी दिल ना दुखाओ, इतनी भी तकलीफ ना पहुंचे तुम्हारी वजह से किसी को। तो फिर उमर लानों का अपना भी यही हाल था। चुनाचे उमर लानों का दौरे खिलाफत है, अपने गुलाम असलम को फरमाते हैं कि असलम मैं मदीना तैयबा के अंदर तो राउंड करता ही रहता हूं कि कौन किस हाल में है, चलो सुना है मैंने कि एक काफला बाहर आया है और मदीने से बाहर उसने अपने खेमे लगा लिए, जरा उनके हालात मालूम करके आए। चुनाचे अपने गुलाम को लेकर वहां चले गए, खेमों वाले अक्सर लोग सोए हुए थे, बस एक खेमे के आगे एक औरत बैठी हुई थी और उसने आग जलाई हुई थी तो वो उसमें चमच हिलाती थी और उसके दो बच्चे साथ रो रहे थे। उमर लानो गए, उस औरत को सलाम किया, पूछा कि अल्लाह की बंदी ये तुम्हारे बच्चे क्यों रो रहे हैं। उसने कहा कि मैं बेवा औरत हूं, मेरे पास कुछ माल पैसा नहीं तो मैं इनके लिए खाने पीने की कोई चीज खरीद नहीं सकी, अब इनको भूख लगी हुई है तो मैंने आग जलाकर बर्तन के अंदर सिर्फ पानी डाल दिया है और चम्मच हिलाती रहती हूं, ये इंतजार करते करते बिलाखिर रो रो के सो जाएंगे, मेरी रात गुजर जाएगी। अब उमर लानो ने जब ये बात सुनी तो वो कांप उठे कि ये तो जिम्मेदारी मेरी है और इस औरत के बच्चे इतनी तकलीफ में। चुनाचे वहां से कहने लगे, अच्छा मैं अभी आता हूं। वापस आए और बैतुल माल से एक आटे की बोरी ली, चीनी या गुड़ की बोरी ली और कुछ घी घी लिया, उसका टीन लिए और सारा सामान अपने गुलाम असलम को कहा कि असलम इसको मेरी पीठ पे लाद दो। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन मैं आपका नौकर गुलाम, आप मुझे हुक्म दें। फरमान ले नहीं, क्यामत के दिन अपना बोझ मैं उठाऊंगा, आज भी मेरा बोझ मुझे ही उठाना है, ये मेरी जिम्मेदारी थी। चुनाचे उमर लानो ने वो बोरी अपने कंधे पे रखी और दूरे हो रहे थे बोझ की वजह से, चूंकि हर वक्त तो नहीं उठाते थे, मगर लेके चले और बिल आखिर वहां पहुंचे। वहां पहुंच के उस औरत को कहा कि देखो ये आटा है और ये गुड़ है और ये घी है, तुम इसका हलवा सा बनाओ और बच्चों को खिलाओ। उसने कहा, अच्छा मैं बर्तन तैयार करती हूं। फरमान लगे, तुम बर्तन तैयार करो, आग मैं जलाता हूं। अमीरुल मोमिनीन, लकड़ियां करीब पड़ी थीं, वो ली और आग जलाने लगे। अब लकड़ियां गीली थीं तो जलती नहीं थीं, तो असलम लानो कहते हैं कि मुझे तो पीछे बिठा दिया उमर लानो ने और फूंके मार रहे हैं लकड़ियां जलाने के लिए और आग जलती नहीं। मैं देख रहा हूं कि उनकी दाढ़ी गुंजान थी, उसके अंदर से धुआं निकल रहा था, यानी नीचे से लकड़ियों का धुआं उनकी दाढ़ी में से गुजर के जा रहा था। अब धुएं के अंदर फूंके मारना तकलीफ दे काम होता है, मगर वो बैठे रहे जलाते रहे, हत्ता के उन्होंने आग जला ली। जब आग जल गई, उस औरत ने आग के अंदर घी डाला और कुछ आटा डाल दिया और कुछ गुड़ डाल दिया, तो बच्चों ने जब उसकी खुशबू सूंघी ना तो रोने की बजाय अब जरा खुश होने लग गए और इंतजार में कि कुछ ना कुछ बन जाएगा। जब उसका हलवा हरीरा बन गया तो उसने उसको उतार दिया कि मैं ठंडा करती हूं, इनको खिलाती हूं। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन अब तो इनका वो खाना बन गया, अब चलें हम, रात हो गई। उमलान कर नहीं, अभी यहीं बैठना है। चुनाचे उस औरत ने अपने बच्चों को वो खाना खिलाया तो बच्चों ने खूब पेट भर के खाना खाया और खाना खा के वो खेलने लग गए। मैंने कहा, अमीरुल मोमिनीन अब तो उन्होंने खाना खा लिया, खेलने लग गए, अब हम चलें। और मैं नहीं, बैठो। मैं फिर बैठ गया। थोड़ी देर में वो बच्चे खेलते खेलते एक दूसरे से हंसने लगे और खूब मस्ती करने लगे। तो फरमाते हैं कि तीसरी मर्तबा मैंने पूछा, अमीरुल मोमिनीन क्यों इंतजार में है? तो उमर लानो ने एक अजीब जवाब दिया। फरमाने लगे कि देखो, जब मैं आया था तो इन बच्चों को मैंने आंखों से रोते देखा था, अब मेरा दिल चाहता है इनको अपनी आंखों से हंसता हुआ देखता जाऊं। इनको रोते मैंने अपनी आंखों से देखा था, अब मेरा दिल चाहता है कि इनको हंसता हुआ अपनी आंखों से देखता जाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा इस पैमाने पे अपने आप को तोलिए। हम में से कितने हैं जो बच्चों को रुलाते हैं, तो कभी हंसता देखने की भी फिक्र हुई? बीवी को रुलाते हैं, उसको हंसना देखने की भी फिक्र हुई कि हम तो कभी तो उसको हंसता भी देखें? एक मूड होता है हमारा, बस परवाह नहीं होती किसी की। बीवी घर में इंतजार में होती है और हमें गली कूचा बाजार से फुर्सत नहीं होती। हम अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं कि हमारी खुशियां दूसरों के दिल किस कदर दुखाती हैं। अपना दिल खुश करने के लिए हम अल्लाह के बंदों के दिल दुखाते फिर रहे होते। तो सोचें फिर हमारा क्या बनेगा। चुनाचे एक वक्त ऐसा था कि जब मुसलमान इतने अच्छे अखलाक वाले थे, मैनर्स इतने अच्छे थे, अखलाक, डीलिंग, हर चीज इतनी अच्छी थी कि लोग मुसलमान के साथ रहना पसंद करते थे। मुसलमान के साथ रहना। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह अलैह एक मुहद्दिस गुजरे हैं, उनके पड़ोस में यहूदी रहता था। यहूदी ने डिसाइड किया कि मैंने दूसरे शहर जाना है तो मकान बेचना हूं, तो उसने सेल का साइन लगा दिया। अब एक बंदा आया, उसने आके पूछा भाई मकान बेचते हो? उसने कहा हां। फिर क्या प्राइस लोगे? तो उसने फर्ज करो 2000 दीनार मांगे। तो वो बंदा बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा यार इस मकान की इस लोकेलिटी में प्राइस तो 1000 बहुत होती है, तुम तो दुगनी प्राइस मांग रहे हो। जब उसने कहा ना कि तुम तो दुगनी प्राइस मांग रहे हो, तो यहूदी ने जवाब दिया कि तुम ठीक कहते हो, मकान की कीमत 1000 दीनार है और दूसरा 1000 दीनार अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के पड़ोस की कीमत है। जब हम सही मानों में मुसलमान थे, हम सारे हमारे हमसाये के मकानों की कीमत बढ़ जाती थी, लोग विश करते थे हमारे पड़ोस में रहने को। और आज क्या हाल है कि जहां हम रह रहे होते हैं वहीं पड़ोसियों को सता रहे होते हैं, अल्लाह के बंदों के लिए जहमत बने हुए होते हैं। तो हमें सीखना है कि मुसलमान कहते किसको हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। अगर हम दूसरों को दुख देते हैं तो हम तो मुसलमान की डेफिनेशन ही पूरी नहीं कर पा रहे, तो हमारी मुसलमानी का है अल्लाह के यहां मुसलमान बन के पेश कैसे होंगे। हमारे अकाबिर इंसान तो इंसान, आम जानदारों को भी बिलावजह तकलीफ नहीं पहुंचाते थे। चुनाचे उमर इब्ने आस लानो एक सहाबी हैं जिन्होंने मिस्र को फतह किया, इनको फातेह मिस्र कहा जाता है। उनके बारे में किताबों में लिखा है कि उन्होंने एक जगह पड़ाव डाला पूरे लश्कर का और आगे चले कि हम शहर को फतह करते हैं। वहां कई दिन लग गए उनको, बिलाखिर शहर फतह हो गया। तो जब शहर फतह हो गया तो उन्होंने फिर वापस कहा लोगों को कि जाओ और अपने खेमे समेट के ले आओ, अब शहर के अंदर हम रहेंगे। सब आए और अपना अपना खेमा समेटने लगे, सबने खेमे लपेट लिए, लेकिन अमर बिन आस ने खेमा वहीं रहने दिया, बस सामान उठाया और चल पड़े। तो लोगों ने कहा कि हजरत आपने खेमा नहीं उखाड़ा, वैसे ही सामान लेके चल पड़े। फरमाने लगे कि मैं जब आया तो मैंने देखा कि मेरे खेमे के अंदर एक कबूतरी ने अंडे दिए हुए हैं, घोंसला सा बना लिया है। मैंने सोचा कि अगर मैं खेमे को उखाड़ूंगा तो उस छोटे से परिंदे को तकलीफ पहुंचेगी, लिहाजा मैं गुजारा कर लूंगा खेमे के बगैर, मगर खेमा नहीं उखाड़ता। उमर बिन आस लानो वहां से आगे चले गए, खेमा वहीं रहा, हत्ता के फिर उस जगह पर एक शहर आबाद हुआ जिसका नाम फुस्तात पड़ गया। फुस्तात अरबी में कहते हैं खेमे को। आज भी मिस्र के अंदर फुस्तात नाम का शहर मौजूद है। इतना तो वो ख्याल रखते थे ना कि मेरी वजह से परिंदे को तकलीफ ना पहुंचे। या अल्लाह, कैसे इंसान थे कि जो सबके लिए रहमत बन के रहते थे। चुनाचे एक बुजुर्ग की वाकया लिखा है कि वो बीवी के कहने पर गए कपड़े खरीदने के लिए। एक थान खरीदा, लाए और ला के बीवी को दिया कि भाई ये कपड़ा मैंने खरीदा है। उसने कहा कपड़ा तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। कहने लगे अच्छा जरा देना, मैं अभी थोड़ी देर में इसको वापस ले आता हूं। वो थान लेके चले गए। तो बीवी हैरान कि भाई कपड़ा लेके आए थे और अच्छा कपड़ा था, पता नहीं क्यों लेकर गए। कुछ देर के बाद वापस आए, अच्छा ये थान रख लो। उसने कहा गए कहां थे? कहने लगे जब मैं तुम्हें थान देने लगा तो मैंने देखा कि इस थान के ऊपर एक च्यूंटी चल रही है और इस च्यूंटी की तरह की च्यूंटियां मैंने उस कपड़े की दुकान के करीब चलते हुए देखी थी, तो मैं समझा कि ये थान पर थी और मेरी वजह से ये अपनी फैमिली से अलग हो गई। मैं इसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, थान लेकर कपड़े की दुकान पर गया, च्यूंटी को वहां छोड़ के कपड़े को वापस ले आया। ये अल्लाह के वो बंदे थे जो च्यूंटी को भी नहीं दुख देना चाहते थे। इंसान तो बड़ी बात होती है, मुसलमान का दिल दुखाना तो अल्लाह के यहां बहुत बड़ी बात है। चुनाची हमारे अकाबिर तो छोटे छोटे जानवरों का ख्याल रखते थे। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह का वाक्या उनके हालात जिंदगी में लिखा है। ये समरकंद के रहने वाले थे और आप जानते हैं कि सर्दियों में समरकंद के अंदर बहुत ठंड होती है, क्योंकि साइबेरिया की यख हवाएं रात को दिन को वहां ऐसी ठंड पहुंचा देती हैं कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाता है, इतनी ठंडक होती है। और वाकई वहां पर तो सर्दियों में लिहाफ या किसी ऐसी चीज के बगैर बैठना भी मुश्किल होता है। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह तहज्जुद के लिए उठे और वुजू किया और वुजू करके आए मुसल्ले पर और इन्होंने जल्दी से नफल पढ़ लिए। अब जब नफल पढ़ लिए तो सर्दी लग रही थी, ठिठर रहे थे, कांप रहे थे, तो ये वापस अपने बिस्तर की तरफ आए कि मैं रिजाई में बैठूं। तो इन्होंने क्या देखा कि कहीं से एक बिल्ली आई और वो इनके बिस्तर में घुस के बैठ गई थी। अब इन्होंने बिल्ली को जब अपने लिहाफ के अंदर लिपट के बैठे देखा तो सोचने लग गए कि मैं अगर लिहाफ को हिलाऊंगा तो बिल्ली की आंख खुल जाएगी, नींद खराब होगी, कोई बात नहीं। ये वापस लौट कर आए और मुसल्ले के ऊपर बैठ गए और जो कुछ देर थी बिल्ली ने सोना था वो सो लिया, उतनी देर ये जिक्र करते रहे, ठिठरते रहे, सर्दी बर्दाश्त करते रहे। जब बिल्ली चली गई तब बिस्तर पर आए। फरमाते हैं कि उसके बाद मैंने ख्वाब देखा जिसमें कहा गया कि तुमने एक जानदार की तकलीफ का इतना ख्याल किया, अब इसका इनाम ये मिलेगा कि तुम हिजरत करके इंडिया की तरफ जाओ, वहां एक बंदा बैत होगा जो बहुत बड़ा अल्लाह का वली होगा। ख्वाजा बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह वहां से हिजरत करके दिल्ली आए तो हजरत मुजद्दिद अलफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह इनसे आकर बैत हो गए। एक बिल्ली की तकलीफ का ख्याल करने पर इनाम देखो अल्लाह ने कैसा अता फरमाया। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे सिलसिला नक्शबंदिया के बुजुर्ग गुजरे हैं ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी रहमतुल्लाह। वो फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा जा रहा था, कब्रिस्तान के करीब से गुजरा तो मैंने एक कुत्ते को देखा कि जख्मी है और उसकी जो है ना वो कोई खिदमत करने वाला कोई भी नहीं, वो अपने जख्मों के साथ इसी तरह बैठा है। तो फरमाते हैं कि मैं गया शहर में और मजदूरी करके मैंने वहां से कुछ मरहम खरीदी और कुछ खाने की चीजें खरीदी और लाकर मैंने उसके जख्मों पे मरहम भी लगाई और उसको खाने के लिए रोटी भी दी। अब वो चूंकि भूखा था वो अगले दिन फिर मुंतजर था। फिर मैंने इसी तरह मजदूरी की, शाम को फारिग हुआ तो फिर मैंने उसको मरहम लगाई, रोटी दी। कहते हैं कि 15 दिन में उसकी खिदमत करता रहा, 15 दिन में वो सेहतमंद हो गया और फिर अपनी गिजा खुद खाने के काबिल हो गया। फरमाते हैं कि ये 15 दिन की मेरी खिदमत अल्लाह ने कबूल की, इल्हाम फरमाया, हम तुम्हें खुद एक सिलसिले का इमाम बनाएंगे। चुनाची अल्लाह ने नक्शबंदी सिलसिले का फैज इनके जरिए से जारी फरमा दी, निस्बत अता फरमा दी। कुत्ते और बिल्ली का ख्याल करने पर अल्लाह की तरफ से इनाम मिलता है और इसकी तस्दीक बुखारी शरीफ की रवायत से होती है कि बनी इसराइल की एक फाहिश औरत थी, बदकार औरत थी, जानी औरत थी, उसने कुत्ते को देखा कि बहुत प्यासा है, गर्मी के मौसम में जबान निकली हुई है। अब उसके पास पानी तो नहीं था मगर कुआं करीब था, उसने अपना जूता अपने दुपट्टे या चादर के साथ बांधा और नीचे पानी में लटकाया और जूते में पानी भर के ना उस कुत्ते को पिलाया। जब कुत्ते ने पानी पिया और उसके मुंह से खुशी की आवाज निकली, अल्लाह ने जानिया औरत के जिना जैसे गुनाहों को माफ फरमा दिया। अगर कुत्ते को तकलीफ से बचाएं और इस पर गुनाह माफ हो जाते हैं, किसी अल्लाह के बंदे को तकलीफ से बचाएंगे तो इस पर कितने गुनाह माफ हो जाएंगे। और यह भी हदीस पाक में है, बुखारी शरीफ की रिवायत के एक बनी इसराइल की औरत थी, उसका दूध बिल्ली पी जाती थी तो उसको बड़ा गुस्सा था, चुनाचे उसने बिलाखिर उस बिल्ली को पकड़ लिया और बंद कर दिया, न खाना दिया न पानी दिया, हालांकि वो परहेजगार थी, नमाज पढ़ती थी, नेकोकार थी, शब जिंदादार थी। बिल्ली इसी तरह भूखी प्यासी मर गई। इस अमल पर अल्लाह ने उस औरत को नेकियों के बावजूद जहन्नम अता फरमा दी। तो जानवर को तकलीफ देने पर जहन्नम मिली और जानवर को तकलीफ से बचाने पर जन्नत मिली, तो अगर कोई अल्लाह के बंदों को तकलीफ से बचाएगा या अल्लाह के बंदों के दिल खुश करेगा, उसको कितना बड़ा दर्जा मिलेगा। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि जिस शख्स के घर में परिंदा हो या जानवर हो और वो उसको भूखा रखे, उसका ख्याल न करे, अल्लाह ताला के हां उसका नाम मोहसिनीन की फहरिस्त में शामिल नहीं किया जाता। अब एक अजीब सी बात सुन लीजिए, हजरत अकदस थानवी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर लिख रहे थे बयानुल कुरान, तो हजरत के हां तो एक मामूल मुतय्यन था, स्केड्यूल बना हुआ था, बरनामेज कि इस वक्त नमाज पढ़नी है, इस वक्त खाना खाना है, इस वक्त मुझे तसनीफ व तालीफ का काम करना है, इस वक्त मजलिस होनी है। हजरत की अहलिया ने अपने घर में चंद मुर्गियां पाली हुई थी। एक मरतबा उन्हें रिश्तेदारों में किसी निकाह या कोई ऐसी तकरीब थी, उसमें जाना पड़ गया, तो जाते हुए वो हजरत को बता गईं कि ये मेरी मुर्गियां हैं और इनको मैं इस वक्त दाने डालती हूं और पानी देती हूं, तो आप प्लीज जितने दिन मैं नहीं हूं इनको दाने डाल दीजिएगा। हजरत ने हां कर दी। अब वह अहलिया साहिबा तो चली गई। अब अल्लाह की शान देखिए कि जब दूसरा दिन आया तो बंदे का जो काम रोज न करने का हो तो भूल जाता है, ध्यान नहीं रहता। तो हजरत थानवी रहमतुल्लाह अपने मामूल के मुताबिक काम करते रहे। फरमाते हैं कि जब मैं तफसीर लिखने बैठा तो मैं सोच रहा हूं और जहन में कोई बात ही नहीं आ रही, कोई मजमून ही नहीं वारिद हो रहा, जहन चल ही नहीं रहा तफसीर के अंदर। फरमान लेके बड़ी कोशिश की कि कोई बात आए और मैं बात को आगे चलाऊं, मजमून आगे बढ़ाऊं या आयतों के मानी आगे, कुछ जहन में नहीं, जैसे जहन बंद ही हो गया हो मेरा। फरमाते हैं मेरा जहन इस तरफ गया कि कहीं मुझसे कोई गुनाह तो सरजद नहीं हो गया, जिसकी वजह से अल्लाह ने ऊपर से इल्म मार्फत की जो बारिश थी उसको रोक दिया हो। तो कहने लगे मैं थोड़ी देर बैठ के इस्तिग़फ़ार करने लगा। इस्तिग़फ़ार करने के दौरान मुझे ख्याल आया, ओहो मुझे तो अहलिया ने कहा था कि मुर्गियों को दाना डालना है और ये तो दिन के 11 बज गए, वो तो कहीं 9 बजे उनको डालने थे। फरमाते हैं कि मैं वहां से उठा, घर आया, मैंने घर आकर उन मुर्गियों को दाना डाला, पानी दिया, जब उन्होंने पानी पी लिया, दाने खा लिए, मैं लौट के वापस आया, बैठते ही अल्लाह ने इल्म की बारिश दोबारा अता फरमा दी है। अगर मुर्गियों के भूखा प्यासा रहने पर एक अल्लाह के ऐसे बड़े वली से भी उलूम व मारिफ को रोक लिया जाता है, तो हम अगर अल्लाह के बंदों के दिल दुखाएंगे तो हमें फिर इल्म नाफे कैसे नसीब होगा, हमें ये नेमतें फिर कैसे नसीब होंगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस बात का ख्याल रखें, ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بڑا خیال رکھیں. اس لیے شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کا خیال رکھو، ساتھی کا خیال رکھو، رشتہ داروں کا خیال رکھو، گھر والوں کا خیال رکھو، ان کے لیے رحمت بنو، ان کے لیے زحمت نہ بنو. یہاں تک فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو کھڑا کریں گے، فرمائیں گے میرے بندے، دنیا میں میں بھوکا پیاسا تھا، نہ تم نے مجھے کھانا کھلایا نہ تم نے مجھے پانی پلایا. تو بندہ بڑا حیران ہوگا، کہے گا یا اللہ، آپ تو کھانے پینے سے بے نیاز، آپ کیسے بھوکے پیاسے تھے؟ اللہ فرمائیں گے کہ تیرا پڑوسی بھوکا تھا، اگر تو اسے کھانا کھلاتا ایسا ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے کھانا کھلایا ہوتا، اگر تو اسے پانی پلاتا ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے مجھے پانی پلایا ہوتا. ذرا سوچئے، یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے اپنے پڑوسی کے ان کاموں کو کرنے کا یہ اجر دیا کہ گویا تم اپنے پروردگار کو یہ چیزیں عطا دے رہے ہو. اللہ اکبر کبھی. اس لیے ہمارے اکابر اس بات کی تعلیم دیتے تھے کہ صحیح سالک وہ ہے جو دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائے. ہم اپنی زندگیوں پر نظر دوڑائیں، جیسے سینگ والی بکری ہوتی ہے نا، کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کسی کو سینگ مار دیتی ہے. ہم بے سینگ کی بکری بنے ہوئے ہیں، یعنی سینگ تو نظر نہیں آتے، لیکن حال ہمارا بے سینگ کی بکری کی طرح ہی ہے. ابھی اس کو دکھا دیا، کبھی اس کو دکھا دیا، کبھی اس کو رلا دیا، کسی پہ روب ڈال دیا، کسی پہ غصہ کر دیا. خود کہتے ہیں وہ جی غصہ آتا ہے مجھے قابو نہیں ہوتا. بھائی اللہ کے بندے، آج ہم سے ہمارا غصہ قابو نہیں ہوتا، کل اگر قیامت کے دن اللہ نے ہم پر غصہ فرما لیا تو پھر کیا بنے گا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو غصہ آئے اور وہ قابو میں نہ آ رہا ہو تو وہ سوچے کہ آج مجھے ان پہ غصہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، کل قیامت کے دن آئے گا کوئی میرا بھی مالک ہے اور وہ مجھ پہ بھی غصہ دکھا سکتا ہے، پھر کیا بنے گا؟ تو ہم اللہ تعالی کے
جی. یہ سب توجہ فرمائی، بلو رنگ کی ایک گاڑی ہے، نیلے رنگ کی گاڑی ہے، واکس ویگن، اور SJ04USN SJ04USN جس صاحب کی بھی وہ غلط پارک کی ہوئی ہے، اس کی وجہ سے ساتھیوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے، برائے مہربانی اس کو موو کر.
تو اللہ کے بندوں کو ہم تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر تکلیف پہنچائیں گے تو ہماری نیکیاں اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوں گی. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے تھے، لوگ تو اپنے فضائل بیان کرتے ہیں نا، تو جو مخلص حضرات ہوتے ہیں وہ پھر اپنی غلطیاں بھی بتا کے بتاتے ہیں کہ میں نے ان کی تصحیح کیسے کی. یہ مخلص بندوں کی دلیل ہوتی ہے. حضرت فرمانے لگے کہ میں ایک مرتبہ وضو کر رہا تھا، بڑھاپے کی عمر تھی، اور والدہ صاحبہ وضو کروا رہی تھی، لوٹے سے پانی ڈال رہی تھی. اب وضو کرتے کرتے ذرا ان کی توجہ کسی اور طرف ہوئی اور پانی جتنا ڈالنا چاہیے تھا اتنا نہیں آ رہا تھا. تو فرماتے ہیں کہ میں نے غصے میں کہہ دیا کہ تم دھیان کیوں نہیں دے رہی. بندہ کہہ دیتا ہے ایسے جیسے جھڑک کے بات کر دی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ ذرا غمزدہ سا ہو گیا، خاموش ہو گئی، جیسے ان کو دکھ ملا کہ میں وضو کروا رہی ہوں اور ذرا سی بات پہ انہوں نے خامخواہ ڈانٹتی ہے. تو فرمانے لگے وضو تو میں نے کر لیا، اب وضو کر کے میں مسجد کی طرف چلنے لگا کہ نماز پڑھوں. جب مسجد کے دروازے پر پہنچا تو میرے دل میں خیال آیا، میں نے ذرا سی بات پہ بیوی کا دل دکھایا ہے، اب میں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوں گا تو میری نماز کیسے قبول ہوگی؟ تو میں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا، اور اس زمانے میں حضرت امامت خود کرواتے تھے، اور اس بچے کو بھیجا کہ جاؤ مسجد کے لوگوں کو بتاؤ کہ میں ابھی تھوڑی دیر میں آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں نماز کے لیے. اور فرماتے ہیں کہ میں مسجد کے دروازے سے لوٹ کے پھر گھر گیا، گھر 10-15 قدم پہ تھا، اور گھر جا کے میں نے اپنی بیوی سے معذرت کی، بھائی مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے آپ کو دکھایا اور آپ کو خواہ مخواہ میں نے ڈانٹ. तो बीबी मुस्कुरा पड़ी, कहने लगी नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैंने उसको मुस्कुराता देखा, फिर मैं लौट के आया और आकर मैंने मस्जिद में इमामत करवाई और मैंने दुआ मांगी, अल्लाह अब मेरी नमाज को कबूल फरमा लेना। हमारे अकाबिर अल्लाह के बंदों का इतना भी दिल नहीं दुखाया करते थे। अब जरा एक बात और सुन लीजिए, हजरत मियां असगर हुसैन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह हमारे अकाबिर में से थे, उनकी खिदमत में हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह कुछ अरसा के लिए तशरीफ ले गए। जब इल्म पढ़ लिया कि भाई बड़ों में से हैं, उनकी खिदमत में रहेंगे तो कुछ सीखेंगे, अल्लाह वालों की सोहबत में रहने का फायदा होता है, तो फरमाते हैं कि मैं उनकी सोहबत में गया तो मैंने दो बातें वहां अजीब देखी। पहली बात कि ईशा की नमाज पढ़ के वापस आ रहे थे तो हजरत एक जगह पर आकर रुक गए और जूते उतार लिए और नंगे पांव चलते रहे और 20-25 कदम उठाने के बाद फिर दोबारा जूता पहन लिया, फिर चलना शुरू कर दिया। मुझे हैरत हुई, मैंने पूछा कि हजरत आप जूते पहन के आ रहे थे, गली थी, एक जगह से जूते उतार दिए, नंगे पांव चले, फिर आगे जाके जूते पहन लिए, फिर आ गए, तो ये क्या मसला था? तो हजरत ने मुझे बात समझाई कि देखें, इस मोहल्ले में एक औरत है, शायद हिंदू औरत थी, और वो पेशा करती थी, फाहिश औरत थी। तो फरमाने लगे कि जवानी जब थी उसकी तो उसके पास बहुत सारे लोग आते थे, अब हो गई है वो बूढ़ी, इंतजार में रहती है, आने वाला कोई नहीं होता, मेरा रास्ता वही है, मैं ईशा के बाद जब वहां गली से गुजरता हूं तो मेरे जहन में ख्याल आता है कि मर्द के जूतों की आवाज पहचानी जाती है, तो अगर मैं उसके घर के करीब जूतों समेत गुजरूंगा उसको उम्मीद लगेगी आवाज सुन करके कोई मेरे दरवाजे पे आ रहा है, और जब मैं वहां से गुजर जाऊंगा तो उसका दिल टूटेगा कि मेरा दरवाजा तो किसी ने खटखटाया, इसलिए मैं उसके दरवाजे के करीब पहुंचकर जूते ही उतार लेता हूं और दरवाजे से गुजरकर फिर जूते पहनता हूं कि मेरे गुजरने के पांव की आवाज का भी उसको पता ना चल सके। एक बदकार औरत का दिल भी मेरी वजह से ना दुखे, आप अंदाजा कर सकते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाते हैं कि मैंने अगले दिन हजरत के साथ खाना खाया, खाना भी था, गोश्त भी पका हुआ था, आम भी थे, तो मैंने जब खूब खाना खा लिया तो दस्तरखान उठाने का वक्त आ गया। मैंने कहा हजरत दस्तरखान मैं समेट देता हूं, तो हजरत ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा कि तुमने दस्तरखान समेटना किसी से सीखा है? अब इल्म पढ़ चुके हैं, इफ्ता तखस्सुल फिल फिक कर चुके हैं, मुफ्ती बन चुके हैं एक तरह से, मगर कुछ वक्त उनके पास गए तो आगे से क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि तुमने दस्तरखान समेटना किसी से सीखा है? तो मैंने अर्ज किया कि हजरत दस्तरखान समेटना आप सिखा दीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि देखो, जो खाना बचा होता है मैं पहले उस खाने को उठाता हूं और उसको एहतियात से घर पहुंचाता हूं ताकि वो खाना घर वाले खा सकें, मोमिन के जूते के अंदर शिफा होती है, तो खाना अंदर चला जाता है। फिर फरमाने लगे कि उसमें जो गोश्त की हड्डियां वगैरह होती हैं उनको मैं अलग कर लेता हूं और उन हड्डियों को मैं फलां जगह जाकर डालता हूं कि वहां गली का रास्ता है कि वहां से कुत्ते गुजरते हैं तो उनकी वो गिजा बन जाता है। और फरमाया कि फिर जो छोटे छोटे जरात रोटी के दस्तरखान पे रह जाते हैं मैं उन सबको इकट्ठा कर लेता हूं, वो देखने में तो छोटे नजर आते हैं लेकिन च्यूटियों के लिए तो पूरी गिजा है, तो मैं उन सब को इकट्ठा करके फलां जगह जहां चींटियों के बिल हैं वहां डालता हूं ताकि चींटियां खा लें, और फिर उसके बाद जो आपने आम खाए तो मैं इनके छिलके गुठलियां बाहर इस तरह नहीं फेंकता। हजरत कैसे करते हैं? फरमान लगे गुठलियों को अलग करता हूं और जो घर के करीब ग्राउंड है उसके कोने पे जाके डाल देता हूं तो ये गुठलियां खुश्क हो जाती हैं। शाम को मुसलमानों के बच्चे खेलने के लिए वहां आते हैं, उनको आम की गुठलियां मिल जाती हैं, वो खुश होते हैं, गुठलियों से खेलते हैं तो मुझे सवाब मिल जाता है। और ये जो छिलके हैं इनको मैं एक जगह पर नहीं डालता। हजरत क्यों? फरमाने लगे कि इसलिए कि मेरे हमसाये में जो रहते हैं लोग, ये गरीब लोग हैं, ये आम अफोर्ड नहीं कर सकते कि फल भी खाएं, इनको तो मुश्किल से रोटी मिलती है, तो मैं इसलिए छिलके नहीं फेंकता कि अगर उनके बच्चे छिलके देखेंगे कि किसी ने खाए और फेंके तो उनके दिल में तमन्ना उठेगी हमारे अब्बू भी हमें आम ला के खिलाते, और वालिद तो ला नहीं सकता तो उनका दिल दुखेगा और मैं उनका दिल नहीं दुखाना चाहता, लिहाजा मैं छिलके लेके बाहर जाता हूं, एक छिलका एक जगह डालता हूं, फिर 10-20 कदम पे दूसरा छिलका, फिर तीसरा, इस तरह छिलकों को फैला देता हूं कि गुजरने वाले को पता भी नहीं चलता किसी ने आम खाए हैं या नहीं खाए। यूं मैं दस्तरखान समेटता हूं। आप बताएं कभी हमने दस्तरखान समेटते हुए ऐसी बातें सोची? अल्लाह वालों के दिल ऐसे मुनव्वर हो जाते हैं कि वो अपने किसी कौल और फेल से दूसरे को तकलीफ पहुंचाना जरा भी पसंद नहीं करते, इसलिए वो बचते हैं कि किसी बंदे को तकलीफ ना आए। और यही दीन इस्लाम की तालीम है। फरमाया अल मुस्लिमो मन सलिम अल मुस्लिमून मिल लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके कौल से और फेल से दूसरे मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। हम अपनी जिंदगी पे गौर करें, आज हम इंटेंशनली कोई मां को रुलाता है, कोई बाप को रुलाता है, कोई बीवी को रुलाता है, कोई बच्चों को रुलाता है, और कोई कारोबार करके उसमें बददियांती करके अपने पार्टनर को रुलाता है, कोई कर्जा लेता है वापस देने का नाम नहीं लेता तो कर्ज देने वाले को रुलाता है। हम अल्लाह के बंदों के लिए, ईमान वालों के लिए देखो वबाले जान बने हुए होते हैं। अगर हमसे पूछा गया तो हम इसका क्या जवाब देंगे? आखिर क्यामत के दिन हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर खड़ा तो होना ही है। ये अगर तसव्वुर बैठ जाए ना कि मुझे क्यामत के दिन अल्लाह को जवाब देना है तो फिर इंसान किसी का दिल नहीं दुखाएगा। एक मर्तबा हम अमेरिका की एक रियासत में जुमा पढ़ाने के लिए हाजिर हुए तो वहां इमाम साहब से थोड़ी देर गुफ्तगू हुई तो वो कहने लगे कि जी मुझे हर संडे को जेल में जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करने का मौका मिलता है। तो हमने उनसे पूछा जी आप कोई हमें अच्छा वाकया सुनाएं। वो कहने लगे थोड़ी देर में तो बयान आपका शुरू हो जाएगा, मैं आपको सिर्फ एक वाकया सुनाता हूं, सुना दीजिए। कहने लगे मैं जेल में गया तो एक आदमी था जो वहां का मकामी था, वो जेल में था बड़े अरसे से, उसको मैंने इस्लाम के बारे में बताया समझाया, उसने कलमा पढ़ लिया, तो मैंने उसका नाम अली रखा और अब उसको मैंने दीन सिखाना शुरू किया, तहारत क्या होती है, फर्ज क्या होते हैं, नमाज क्या होती है, जो जरूरियात दीन थी वो मैंने उसको सिखानी शुरू की। तो वो मेरे बहुत करीब हो गया। फिर मैं एक साल जाता रहा तो वो बिल्कुल मेरे साथ ऐसे जैसे कोई सगा भाई होता है, ऐसे मोहब्बत करने लग गया। एक दिन बैठे हुए थे, मैंने उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि अली बताओ इस्लाम लाने से पहले तुम्हारे एहसासात क्या थे और अब इस्लाम लाने के बाद तुम्हारे एहसासात क्या हैं? कहने लगे जब मैंने ये क्वेश्चन किया ना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैं सॉरी करने लगा, प्लीज अगर आप हर्ट हुए तो मुझे माफ कर दें, कोई ऐसी बात मैंने कर दी। वो कहने लगा नहीं, बस आज मैं अपने दिल की बात आपके सामने खोल दूंगा कि इस्लाम लाने से पहले मैं जानी था, शराबी था, मगर मैं ऐसा नफ्सियाती मरीज था कि मुझे दूसरे बंदों को कत्ल करके तड़पता जब देखता था तो मुझे मजा आता था, तो मैं बेगुनाहों को कत्ल करता था और जब उनकी लाश तड़पती थी तो मैं उसके गिर्द नाचता था। ऐसा जानवर था, जालिम था। मैं मौके की तलाश में रहता था, कहीं औरत अकेली मिल गई, बच्चा अकेला मिल गया, बंदा अकेला मिल गया, जहां मुझे कोई अकेला मिल जाता मैं उसको बिला वजह कत्ल करता, उसका खून बहता हुआ देखता, तड़पता हुआ देखता, ठंडा होता देखता, और नफ्सियाती मरीज था कि इससे मुझे खुशी होती थी। कहने लगा कि मैंने 30 से जायद बंदों को बेगुनाह कत्ल किया हुआ है, यहां तो मैं आया हूं एक छोटे से जुर्म में और 6 महीने के बाद मैं बात पस निकल जाऊंगा, किसी को मेरा पता नहीं चला कि मैंने कितने मर्डर किए हैं। लेकिन जब तुमने इस्लाम का कंसेप्ट मुझे दिया और क्यामत के दिन का कंसेप्ट दिया कि हर बंदा अपने अमल का जवाब दे होगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। अब मैं जब क्यामत के दिन के बारे में सोचता हूं ना कि मैं अल्लाह के सामने पेश होऊंगा और वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने ये जुल्म क्यों किया था, तो कहने लगा कि मेरा दिल डरता है, खौफ खाता है, और अब मेरा दिल इतना हिसास हो गया है कि जब मुझे हफ्ते के बाद कमरे से निकालते हैं थोड़ी देर के लिए तो मैं बाहर कदम रखते हुए इसका भी ख्याल करता हूं पांव के नीचे कोई चींटी भी आके न मरने पाए। जो कुफर के जमाने में 30 से जायद बेगुनाह लोगों को कत्ल करता है, जब क्यामत का तसव्वुर उसके जेहन में उतर जाता है फिर अल्लाह उसका दिल ऐसा बना देते हैं कि वो चलते हुए ये भी ख्याल करता है कि पांव के नीचे चींटी आके भी न मरने। मलिक शाह ईरान का बादशाह गुजरा है, मैं अपनी बात को जरा समेटता हूं। वो अपने पुलिस वालों के साथ एक मर्तबा 3 दिन जंगल में शिकार खेलने के लिए चला। पुलिस वालों ने वहां एक गाय देखी जो चर रही थी और कोई बंदा साथ था नहीं, उन्होंने अपने आप में ही सोच लिया कि ये शायद आजाद गाय है, चलो उन्होंने उसको पकड़ के जिबा किया और उसका गोश्त उन्होंने भून के खाया। वो गाय एक बुढ़िया की थी, जब उसको दूसरे दिन पता चला कि मेरी गाय को तो जिबा कर दिया गया तो वो आई और उसने पुलिस वालों को कहा कि भाई आप लोगों ने मेरी गाय को जिबा कर दिया तो अब आप ऐसा करें कि मुझे पैसे दे दें, मैं दूसरी गाय खरीद लूं, मेरा तो गुजारा ही उसके दूध मक्खन दही लस्सी के ऊपर होता था। पुलिस वालों ने कहा कि हमारे पास तो पैसे नहीं है। उसने कहा अच्छा, अगर आपके पास पैसे नहीं तो बादशाह से मुझे बात करने दें। उनका नहीं, हम आपको नहीं मौका देते बादशाह से बात करने का। तो वो बूढ़ी औरत बड़ी परेशान हुई कि अब मैं करूं तो क्या करूं। उसने किसी को अपना दुख सुनाया, वो समझदार आदमी था, उसने कहा देखो बादशाह ने 2 दिन के बाद वापस जाना है और वापसी में एक दरिया है जिसके ऊपर पुल है, उस पुल से ही इसने गुजरना है, तुम चली जाओ पुल पे बैठ जाओ, जब बादशाह की सवारी गुजरने लगे तो सवारी को रोक के बात सुना देना, बादशाह तुम्हें गाय के पैसे दे देगा, अच्छा बंदा है। लो जी बूढ़ी अम्मा वहां पहुंच गई। जब तीसरे दिन बादशाह की सवारी वहां से गुजरने लगी तो बुढ़िया उठी और बादशाह के घोड़े की लगाम उसने पकड़ ली, खड़ा कर लिया। तो मोहम्मद शाह ने पूछा, मलिक शाह ने पूछा कि अम्मा मेरी सवारी क्यों रोकी है। तो बुढ़िया ने उस वक्त उसको एक बात कही कि मलिक शाह, मेरा और तेरा एक मामला है। मलिक शाह, मेरा और तेरा एक मामला है, मैं ये पूछना चाहती हूं इस पुल पे चुकाना चाहता है या क्यामत के दिन पुल सिरात पे चुकाना चाहता है। कहते हैं कि बुढ़िया ने जब यह बात की ना तो उसकी आंखों में से आंसू आ गए, नीचे उतरा बात पूछी और उसको सात गायों की कीमत दी, सात गायों की, और सात गायों की कीमत दे के हाथ जोड़ के कहा कि अम्मा इधर ही माफ कर देना, मैं पुल से रात पे जवाब देने के काबिल नहीं। हमने अल्लाह के जिन बंदों के दिल दुखाए हैं दुनिया में उनसे माफी मांग लेना आसान है, वरना कल क्यामत के दिन अगर पुल से रात पे हमें खड़ा कर लिया गया तो हमारा क्या बनेगा। इसलिए कुरान मजीद में है कि कुछ लोग होंगे अल्लाह ताला के सामने से जब जाएंगे ना, आपने दुनिया में देखा ना एयरपोर्ट पे स्कैनिंग मशीन होती है, एक एक करके जाते हैं तो जिसके पास कोई मेटालिक चीज होती है तो बीप आ जाती है तो वो फिर उसकी तफ्तीश करते हैं, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो सीधा गुजर जाता है। क्यामत के दिन इसी तरह होगा, एक एक बंदा ये तुमूना फुरादा कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, अल्लाह फरमाते हैं एक एक करके तुम मेरे सामने से जाओगे, वो स्कैन हो रहे होंगे सारे बंदे, और जिन्होंने दूसरों के दिल दुखाए होंगे और दूसरों के लिए वबाले जान बन के रहे होंगे और अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा होगा, जब वो गुजरने लगेंगे तो उस वक्त क्या होगा, फिर बीप आएगी, फिर पता चल जाएगा। तो जैसे दुनिया में कहते हैं ना, अच्छा भाई जरा आप एक तरफ आए, आपकी हमने फिजिकल तलाशी लेनी है, बाद लोग होंगे कि जो गुजरने लगेंगे तो फरिश्ते उनको एक तरफ लेके जाएंगे और आवाज आएगी वकिफूहुम इन्नहुम मसऊलून, इनको रोक लीजिए, हमने इनका ट्रायल लेना है, हमने इनसे तफ्तीश करनी है, पूछ गुछ करनी है, ये ऊपर से मियां तस्बी थे अंदर से मियां कस्बी थे, ऊपर से इन्होंने चेहरे बना लिए थे नेकों वाले, घर बीवी का दिल दुखाते थे, मां को सताते थे, वालिद को दुख देते थे, भाई को दुख देते थे, ये अल्लाह के बंदों के लिए वबाले जान बने हुए थे, वकिफूहुम रोक लीजिए इनको, इन्नहुम मसऊलून, हमने इनका ट्रायल लेना है, ये छुपे गुनाह करते थे, लोगों के सामने हाजी बनते थे, पाजी बन के रहते थे, इनको रोक लो, हम इनकी तफ्तीश करेंगे, आज वक्त है हम अपने इन तमाम गुनाहों की अल्लाह से सच्ची माफी मांग लें। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो बंदा किसी जिम्मी का दिल दुखाए, मातहत का दिल दुखाए, अना हजीजहुम यौमुल क़ियामा, मैं क़यामत के दिन उन मातहतों का वकील बन के खड़ा हूंगा और जब तक उनको हक नहीं दिलाऊंगा मैं उस बंदे को वहां से हिलने नहीं दूंगा। अब अगर क़यामत के दिन बीवी के वकील अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन के खड़े हो गए, तू जो रुलाता था तो किस लिए, जिनकी शफाअत चाहते हैं, जिनकी शफाअत की उम्मीद पे जिंदगी गुजारते फिर रहे हैं, अगर वो मातहतों के वकील बनकर खड़े हो गए तो हमारा क्या बनेगा। आज वक्त है हम अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ मांगे कि परवरदिगार आलम हमें नहीं समझती, जानवर बनते रहे, कभी इस पे गुस्सा किया, कभी इसका दिल दुखाया, कभी उसका दिल जलाया, मालिक आज इस बात का एहसास हुआ कि आखिर क़यामत के दिन इसका हमने जवाब तो देना ही है, अल्लाह हम उन बंदों से भी दुनिया में माफी मांगेंगे मगर आपसे भी माफी मांगते हैं, आप हमें अल्लाह माफ फरमा दीजिए और आइंदा हमें हिसास दिल अता कर दीजिए ताकि हम किसी को भी तकलीफ ना पहुंचाएं, हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, हम घर का अच्छा फर्द बन के रहें, मुआशरे का अच्छा फर्द बन के रहें, अल्लाह के बंदों के लिए रहमत बन के रहें, अल्लाह ताला हमें सही मानों में मुसलमान बनकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुझे ये कहा गया है कि दुआ से पहले मुराकबा भी करवा दे اور مراقبے سے پہلے توبہ جو احباب کرنا چاہتے ہیں ان کو توبہ کے کلمات بھی پڑھا دیں. تو جن احباب نے دل میں یہ نیت کر لی کہ ہم پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنا چاہتے ہیں, آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا ارادہ کر رہے ہیں, یہ عاجز چند کلمات پڑھے گا. آپ پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے گا, الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ, اما بعد. یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پڑھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ, محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه إقرار باللسان وتصديق بالقلب, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. چند معمولات ہیں, ان کو اگر آپ باقاعدگی سے کریں تو انشاءاللہ دل منور ہوگا, دل کی ظلمت دور ہوگی, دل نرم ہو جائے گا. ان میں سے پہلا ہے کہ 100 مرتبہ استغفار صبح اور شام, پھر دوسرا ہے 100 مرتبہ درود شریف صبح اور شام پڑھنا, تیسرا ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت کرنا, ایک پارہ ہو تو بہت اچھا ورنہ آدھا پارہ صحیح, چوتھا ہے چلتے پھرتے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھنا, دست بکار دل بیار, ہاتھ کام کاج میں مشغول, دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول, اور پانچویں چیز ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ, یعنی تھوڑی دیر کے لیے انسان ساری دنیا کے خیالات سے ہٹ کٹ کے اللہ سے لو لگا کے بیٹھے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے, اور میرا دل اللہ اللہ اللہ, یہ اللہ اللہ میرا دل کہہ رہا ہے, زبان سے نہیں پڑھنا, دل پڑھ رہا ہے اور میں اس کو سن رہا ہوں. یہ عجیب بات ہے کہ یہ دھیان کر کے بیٹھنا, تھوڑے ہی دنوں میں انسان کو ایک ادراک شروع ہو جاتا ہے کہ واقعی میرا دل جیسے اللہ 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 اللہ, اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں, اور یہ ذکر لسانی سے 70 گنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے, حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہے. آپ روزانہ کچھ دیر یہ کریں گے تو اس کی برکت دیکھیں گے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سیل فون پہ روزانہ بات چیت کرتے ہیں تو پھر رات کو اس کو چارج کرتے ہیں, ریچارج کرتے ہیں, اگر کسی دن چارج کرنا بھول جائیں تو اگلے دن پھر بیٹری فلیٹ ہو جاتی ہے اور فون ہی بند ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم روزانہ دفتر میں, دکان پہ اور کام پہ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیات کی بیٹری ڈسچارج ہو جاتی ہے, تو اس کو بھی روزانہ چارجر سے لگانے کی ضرورت پڑتی ہے. یہ جو مراقبہ ہے نا, یہ چارجر ہے ایک طرح سے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت سے آئی دور ہو رہی ہے. تو دیکھا آپ نے کنیکشن جوڑا نا اللہ کی رحمت سے, تو جتنی دیر آپ مراقبے میں بیٹھیں گے آپ کے دل کی کیفیات کی ریچارجنگ ہوتی رہے گی. تو اگر آپ روزانہ ریچارجنگ کرتے رہیں گے تو ماشاءاللہ بیٹری رہے گی, کمیونیکیشن رہے گی, تو انسان کی کیفیات اچھی رہتی ہیں اور سنتوں پہ عمل نصیب ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی یاد والی زندگی گزار لیتا ہے. تو یہ 5 اعمال ہیں, درود شریف پڑھنا, استغفار پڑھنا, قرآن پاک پڑھنا, ہر وقت اللہ کا دھیان رکھنا, اور روزانہ 10-15 منٹ صبح اور شام ذکر قلبی یعنی مراقبہ کرنا. ابھی دعا سے پہلے ہم چند منٹ کے لیے مراقبے کی مشق کر لیتے ہیں. آپ سب ذرات جہاں بیٹھے ہیں ظاہر کی آنکھیں بند کر لیجئے اور اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیے. یہ سوچئے کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے, دل میں سما رہی ہے, دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ. نیچے دیکھیے, نیچے دیکھیے, اب آؤ حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے, بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدایا فضل فرما دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے. جو ہو دیدار تیرا روز محشر تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے. یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے. پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے. میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں, بدل دے میرا رستہ دل بدل دے. ہوا او حرص والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے کریم آقا, ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, خطاؤں سے درگزر فرما, عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما, دلوں کو صاف فرما, سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما, اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما, ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما، سجدے کا سرور نصیب فرما، قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما، رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما. اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کلمہ پڑھائیں ہمیں اپنے اختیار سے کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اس سے پہلے کہ لوگ کفن پہنائیں اللہ ہمیں تقوی کی پوشاک پہننے کی توفیق عطا فرما. اور اس سے پہلے کہ ہماری نماز پڑھی جائے اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اس سے پہلے کہ قیامت کے دن آپ کے سامنے پیشی ہو اللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں قبولیت نصیب فرما. زندگی کے آخری حصے کو زندگی کا بہترین حصہ بنا، قیامت کے دن کو زندگی کا سب سے زیادہ خوشیوں بھرا دن بنا. اللہ ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما. اللہ ذلت سے محفوظ فرما، علت سے محفوظ فرما، قلت سے محفوظ فرما، علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما. اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، اور اے کریم آقا عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے بھی محفوظ فرما. اللہ درگزر کا معاملہ فرما، بچہ پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، بندہ پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے. اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، مالک ہم نے بھی جھولیاں پھیلائی ہیں، اپنی رحمت سے بھرپور فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اللہ ہم روحانی بیمار ہیں، ہمیں روحانی طور پر شفا نصیب فرما. میرے مولا ہم آپ کے بندوں کے لیے وبال جان بن کر زندگی گزار رہے ہیں، میرے مولا رحمت کر دیجئے، کرم کر دیجئے. اللہ ہمیں حیوان کی بجائے انسان بنا دیجئے، ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجئے. اللہ کرم کر دیجئے، حساس دل عطا کر دیجئے، دکھنے والا دل عطا کر دیجئے. اے اللہ غم والا دل عطا کر دیجئے، دوسروں کی دل آزاری سے ہمیں بچا لیجئے. اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے. اللہ آپ کے پیارے یوسف علیہ السلام کریم تھے، انہوں نے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کہا تھا لا تسریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ آپ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے دن قریش مکہ کو یہی الفاظ کہہ دیے تھے لا تسریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا. اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں، اور آپ کو تو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے، اور آپ نے قرآن میں جا بجا اپنی کریمی کے تذکرے کیے ہیں. اللہ آج آپ اپنے بندوں کو یہی فرما دیجئے لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. یا اللہ آپ کہہ دیجئے، آپ کو کریمی سجتی ہے، اللہ مہربانی کر دیجئے، اپنے بندوں کو معاف کر دیجئے، اللہ کرم فرما دیجئے. میرے اللہ ہم پر احسان فرمائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اللہ آپ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوالی کو انکار نہ کرو. جب ہم کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں. اے کریم آقا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، آپ ہمیں بھی انکار نہ فرمائیے. اللہ جس طرح ایک عیال دار اپاہج کسی دنیا کے سخی کے دروازے پہ حاضر ہوتا ہے، اس امید سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اگر یہ دروازہ کھل گیا میرے بچوں کا فاقہ ختم ہو جائے گا. اللہ ہم اس عیال دار اپاہج سے زیادہ محتاج ہیں، تو دنیا کے سخی سے زیادہ بڑا سخی ہے. اللہ ہم آپ کا دروازہ اس امید کے ساتھ کھٹکھٹا رہے ہیں، اگر یہ دروازہ کھل گیا سعادت نصیب ہو جائے گی، اور اگر نہ کھلا تو بدبختی پلے پڑ جائے گی. اللہ دروازہ کھول دیجئے، اللہ دروازہ کھول دیجئے. اللہ گھر آئے لوگوں کا
دنیا دار لحاظ کر لیتے ہیں، یہ آپ کے بندے اپنے گھروں سے چل کے آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کا آنا قبول کر لیجئے، نیک مرادوں کو پورا کر دیجئے، جو تکلیفیں ہیں وہ دور کر دیجئے، اٹکے کاموں کا ہونا آسان فرما، الجھے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اللہ یوسف علیہ السلام، اللہ آپ کی رحمت کی نظر فضیل بن عیاض پر پڑ جاتی ہے، آپ ان کو ڈاکوں کی سرداری سے نکال کے ولیوں کا سردار بنا دیتے ہیں، آپ کی رحمت کی نظر بشر حافی پہ پڑ جاتی ہے، دنیا کے شراب خانے سے نکال کے آپ ان کو اپنی محبت کی شراب پلا دیتے ہیں، آپ کی محبت کی نظر جنید بغدادی پہ پڑ جاتی ہے، دنیا کی پہلوانی سے نکال کے آپ ان کو اولیاء کی دنیا کا پہلوان بنا دیتے ہیں، اے کریم ایک ایسی محبت پری نظر ہم پر بھی ڈال دیجئے، اللہ بشر آپ ہی تو شراب خانے میں تھے اور آپ کے بندے تو مسجد اور آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، ایک رحمت کی نظر ڈال دیجئے، اللہ دلوں کو بدل دیجئے، دل آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء، آپ جیسے چاہتے ہیں ان کو پھیر دیتے ہیں، دلوں کو نیکی پر پھیر دیجئے، نیکی پر جما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ کر دیجئے، ہماری ان دعاؤں کو اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، جو مانگا عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اللہ پوری دنیا میں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مدارس عربیہ کی حفاظت فرما، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ ہوتی ہے ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششوں کی حفاظت فرما، ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، اس شہر میں جتنے بھی مسلمان ہیں اللہ سب پر خصوصی رحمت نازل فرما، جن کو اسلام کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت کی نعمت نصیب فرما، اللہ آج ہماری اس مجلس میں اٹھنے سے پہلے اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما، معاف فرما، کریم آقا اٹھے ہاتھوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔